नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तुर्की निर्मित करीब 400 ड्रोनों से 36 स्थानों को निशाना बनाने के पाकिस्तान के उकसावेपूर्ण प्रयास को सफलतापूर्वक विफल किया। भारत ने जम्मू कश्मीर के स्कूलों और धार्मिक स्थलों पर गोलाबारी के लिए इस्लामाबाद की आलोचना की। कहा, पाकिस्तान ने ड्रोन से भारत को निशाना बनाते समय नागरिक विमानों का ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। केंद्र ने सभी राज्यों से आपातकालीन स्थिति में नागरिक सुरक्षा प्रमुखों को आपातकालीन खरीद का अधिकार देने को कहा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में पर्याप्त खाद्य भंडार का आश्वासन दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का मजबूत समर्थन। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल क्रिकेट के शेष सत्र को एक सप्ताह के लिए निलंबित किया। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। पाकिस्तान ने कल रात करीब 400 ड्रोनों का इस्तेमाल करते हुए लेह से सरक्रीक तक 36 स्थानों पर घुसपैठ करने का प्रयास किया। भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने काइनेटिक और नॉन काइनेटिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए कई ड्रोनों को मार गिराया। नई दिल्ली में विशेष संवाददाता सम्मेलन में भारतीय सेना के कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने समूची पश्चिमी सीमा पर कई बार भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया और सैन्य ढांचे को लक्ष्य बनाने की कोशिश की।
अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर भारी हथियारों से गोलाबारी की। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठ का लक्ष्य वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण और खुफिया जानकारी हासिल करना था। उन्होंने कहा कि ड्रोनों के मलबे की फॉरेंसिक जांच की जा रही है और प्रारंभिक खबरों से पता चलता है कि ये तुर्की में बने असगार्ड सोनगार्ड ड्रोन थे। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने 7 मई की शाम को अकारण ड्रोन और मिसाइल हमले के दौरान अपना सिविल विमानन क्षेत्र खुला रखा। उन्होंने नागरिक विमानों का इस्तेमाल ढाल के रूप में करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की।
7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है।
विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि पाकिस्तान के हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र ड्रोन पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा ठिकानों पर दागे गए और इनमें से एक ड्रोन पाकिस्तान के एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर भारी तोपों और सशस्त्र ड्रोनों का इस्तेमाल करते हुए गोले बरसाए, जिनमें कुछ भारतीय सैनिक हताहत हुए। उन्होंने कहा कि भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तानी सेना को भी भारी क्षति पहुंचाई गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि हमलों से इंकार करना पाकिस्तान की दोहरी नीति का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय पर हमला वॉल स्ट्रीट जनरल के पत्रकार डेनियल पर्ल की हत्या का माकूल जवाब है।
The Jaish-e-Mohammed was in some way directly or indirectly responsible for the death of Daniel Pearl. The attack on that facility of the Jaish-e-Mohammed in Bahawalpur is, I would imagine, a fitting part of this unfortunate incident.
और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता भूपेंद्र से। भूपेंद्र, भारत की जवाबी कार्रवाई को धार्मिक रंग देने के पाकिस्तान के प्रोपेगंडा पर विदेश सचिव ने क्या कुछ कहा?
जी लवलीन, पाकिस्तान ने पिछली रात भारत पर ताबड़तोड़ हमले करते हुए 36 जगहों को निशाना बनाया लगभग 300 से 400 ड्रोन के जरिए भारत के कई नागरिक और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, लेकिन भारतीय सशस्त्र बलों ने इन हमलों को नेस्तनाबूद कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान ने तोपों और सशस्त्र ड्रोन का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके कारण भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत और घायल हुए। इसके जवाब में भारतीय सेना ने भी जवाबी गोलीबारी की, जिससे पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान इस बार भी अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश करते हुए इन हमलों की आधिकारिक जिम्मेदारी लेने से भाग खड़ा हुआ और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर पाकिस्तान ने यह झूठा दावा किया कि भारतीय सशस्त्र बल और भारतीय वायुसेना ने ही अमृतसर को निशाना बनाया। ये पाकिस्तान की हताशा का जीता जागता नमूना है। नई दिल्ली ने इस्लामाबाद के इस दावे को भी नकार दिया कि भारत ने ड्रोन हमले के जरिए ननकाना साहिब गुरुद्वारे को निशाना बनाया। पाकिस्तान की इस हरकत को भारत ने पूरी तरह नकारा है। पाकिस्तान की ये मंशा है कि सांप्रदायिक रंग देकर भारत में कलह पैदा की जाए। भारत में पूजा स्थलों को निशाना बनाने और उन पर बमबारी करने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और कहा कि पाकिस्तान बेहद ही निचले स्तर पर उतर आया है। जी लवनी
जी, धन्यवाद भूपेंद्र इस जानकारी के लिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में तीनों सेनाओं के प्रमुखों, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा स्थिति और भारतीय सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष, तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा सचिव उपस्थित थे। गृहमंत्री अमित शाह ने भी सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशकों के साथ बैठक की। केंद्र ने सभी राज्यों से आपात स्थिति में नागरिक सुरक्षा प्रमुखों को आपातकालीन खरीद का अधिकार देने को कहा है। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव ने आज इस संबंध में राज्यों को पत्र लिखा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को आवश्यक दवाओं, रक्त, ऑक्सीजन और ट्रामा केयर किट की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी आपातकालीन चिकित्सा प्रणाली 2400 घंटे मुस्तैद रहे। केंद्र सरकार के अस्पतालों को राज्य और जिला प्रशासन, सशस्त्र बलों और डॉक्टरों के क्षेत्रीय संघों और निजी क्षेत्र के अस्पतालों के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा गया है, ताकि इमरजेंसी रिस्पॉन्स नेटवर्क को दुरुस्त रखा जा सके। इस बीच सरकार ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि देश में पर्याप्त मात्रा में खाद्य भंडार हैं। साथ ही सरकार ने जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी चेतावनी जारी की है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने भी स्पष्ट किया है कि एटीएम, नकद जमा और निकासी मशीनों और डिजिटल सेवाओं सहित उनकी सभी सेवाएं पूरी तरह से चालू हैं। आनंद कुमार के साथ दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
सरकार ने सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नागरिकों से रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही की लाइव कवरेज या वास्तविक समय के रिपोर्टिंग न करने को कहा है।
रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ऐसी संवेदनशील जानकारी और सूत्र आधारित सूचना अभियान की प्रभावशीलता को खतरे में डाल सकता है। मंत्रालय ने कारगिल युद्ध, 2008 मुंबई आतंकी हमला और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं का उल्लेख करते हुए समय पूर्व रिपोर्टिंग के जोखिमों का हवाला दिया। केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2021 के अनुसार आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान केवल नामित अधिकारियों द्वारा समय समय पर ब्रीफिंग की अनुमति है। रक्षा मंत्रालय ने सभी हितधारकों से राष्ट्र की सेवा में उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए कवरेज में सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। पल्लवी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी।
पाकिस्तान की आक्रामकता के विरुद्ध भारत के हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब से परेशान आतंक का गढ़ पाकिस्तान अब डिजिटल क्षेत्र में गलत सूचनाएं फैलाने में जुट गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी वीडियो और गलत चित्रों का उपयोग कर पाकिस्तान वैश्विक नैरेटिव विकृत करने और जनता की धारणा प्रभावित करने की निरंतर कोशिश कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पाकिस्तान किस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है।
आतंकवादियों को पनाह देने के लिए मशहूर पाकिस्तान अब पूरी तरह दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। इसी हताशा में वह अब सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी और बेबुनियाद तस्वीरों और वीडियो से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने की नाकाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन झूठ के पांव नहीं होते और सच्चाई सामने आ ही जाती है। पाकिस्तान ने एक और हास्यास्पद हरकत करते हुए भारत के खिलाफ शेखी बगारने के वीडियो गेम की क्लिप का इस्तेमाल किया है, जिसमें फर्जी रॉकेट और मिसाइल उड़ते नजर आ रहे हैं और इसे इस तरह पेश किया जा रहा है कि जैसे यह भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव से संबंधित है। पाकिस्तान के लफाजी का एक और उदाहरण सामने आया है, जिसमें ढाका के एक वीडियो को जम्मू में किए गए पाकिस्तानी हमले के तौर पर दिखाया जा रहा है। इसी तरह पाकिस्तान ने लेबनान में 2020 में हुए एक विस्फोटक हमले के वीडियो का इस्तेमाल कर यह फर्जी दावा किया है कि उसने भारत पर मिसाइल हमला किया है। ये सब कोशिशें दिखाती है कि पाकिस्तान की सूझबूझ पर पत्थर पड़ गए हैं और बदहवासी में उसे कुछ सूझ नहीं रहा और वे हताशा में बचकानी हरकत कर रहा है। सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
इस महत्वपूर्ण समय में प्रत्येक जानकारी की सावधानी पूर्वक जांच करना महत्वपूर्ण है। कोई भी संदिग्ध सामग्री, विशेष रूप से भारतीय सशस्त्र बलों से संबंधित या मौजूदा स्थिति से संबंधित कोई भी जानकारी की सूचना पीआईबी फैक्ट चेक को देनी चाहिए। ऐसी सामग्री व्हाट्सएप नंबर 8799711259 और ईमेल आईडी socialmedia@pib.gov.in पर भी भेजी जा सकती है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू करने के बाद से भारत के दृष्टिकोण को लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भरपूर समर्थन मिल रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, इजराइल, कतर और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई अन्य देशों ने भारत को अपना समर्थन दिया है। यूरोपीय संघ और इसके सभी 27 सदस्य देशों ने एक स्वर में सशक्त बयान जारी किया है। इधर भारतीय फिल्म जगत भारतीय सशस्त्र बलों के समर्थन में एकजुट है। अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, रजनीकांत, आलिया भट्ट, अल्लू अर्जुन, विकी कौशल, कंगना रनौत, कैटरीना कैफ, श्रद्धा कपूर, मोहनलाल, आर माधवन, सामंता प्रभु और रणवीर सिंह सहित कई कलाकारों ने सशस्त्र बलों के समर्पण और सेवा के लिए सम्मान तथा प्रोत्साहन के संदेश साझा करके अपना समर्थन व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने 24 हवाई अड्डों को बंद रखने की अवधि 14 मई तक बढ़ा दी है। एयर इंडिया ने कहा है कि जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, चंडीगढ़, भुज, जामनगर और राजकोट के लिए उसकी उड़ानें 15 मई तक रद्द रहेंगी। वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की विशेष अदालत ने 6 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 28 अप्रैल को 18 दिन के रिमांड समाप्त होने के बाद राणा को अदालत में पेश किया गया था। इससे पहले अभिकरण ने राणा की आवाज और हस्तलिपि के नमूने एकत्र किए थे। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने सिंधु जल संधि के निलंबन से संबंधित समस्या के समाधान करने में बैंक की भूमिका की खबरों को खारिज कर दिया है। श्री बांगा ने कहा कि विश्व बैंक की मध्यस्थता के अलावा कोई भूमिका नहीं है। देश के सभी राज्यों ने आपातकालीन उपायों, संसाधन तैनाती और उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा के साथ अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू का दौरा कर ड्रोन हमलों और सीमावर्ती जिलों में गोलाबारी के बाद स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने जम्मू और सांबा जिलों में कई शिविरों और रिहायशी क्षेत्रों का दौरा भी किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि राज्य सरकार ने 9 ड्रोन रोधी प्रणालियां खरीदने का निर्णय लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सीमावर्ती इलाकों में तैयारियों की समीक्षा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को हर स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच घरेलू शेयर बाजारों में आज गिरावट आई। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 880 अंक गिरकर 79,454 पर आ गया। निफ्टी भी 266 अंक की कमी के साथ 24,008 अंक पर बंद हुआ। बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 के शेष सत्रों को एक सप्ताह के लिए निलंबित करने की घोषणा की है। बीसीसीआई ने कहा है कि संबंधित अधिकारियों और हितधारकों के परामर्श से स्थिति के व्यापक आकलन के बाद संशोधित कार्यक्रम और स्थलों के बारे में जानकारी दी जाएगी। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी और उन्नति हुड्डा ताइपे ओपन सुपर के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तुर्की निर्मित करीब 400 ड्रोनों से 36 स्थानों को निशाना बनाने के पाकिस्तान के उकसावेपूर्ण प्रयास को सफलतापूर्वक विफल कर दिया है। भारत ने जम्मू कश्मीर के स्कूलों और धार्मिक स्थलों पर गोलाबारी के लिए इस्लामाबाद की आलोचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सभी तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।